हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 154। ऋषभ ने समर का हाथ पकड़कर उसे खींचा। समर का संतुलन बिगड़ा और वो ऋषभ के ऊपर गिर गया। दोनों कुछ सेकंड तक उसी अवस्था में रहे। ऋषभ का हाथ समर के गाल पर था और समर अपने मन में बहुत कुछ सोच रहा था। ऋषभ के इतने नज़दीक होना उसके मन को बहुत ही अजीब सी अनुभूति से भर रहा था। वहीं ऋषभ को उसका इतना पास आना काफ़ी सुकून भरा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कब से यही चाहता था, जो उसे अभी इस पल में मिल गया था। लेकिन जैसे ही समर को अपनी स्थिति का एहसास हुआ, उसने तुरंत ही अपने गाल से ऋषभ का हाथ हटा दिया। फिर वो ऋषभ के ऊपर से उठकर खड़ा हुआ और बोला, What the hell are you doing, ऋषभ? समर के इस तरह चिल्लाने पर ऋषभ ने अपनी आंखें बंद की। वो बहुत निराश हुआ और फिर आंखें खोलकर अपनी जगह पर बैठ गया। उसने अपने बिगड़े हुए कपड़े संभालने लगा। दूसरी तरफ समर भी अपने बिखरे हुए बाल और कपड़े संवार रहा था। वो थोड़ा गुस्से में भी था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ज्यादा गुस्सा ऋषभ पर है या अपने आप पर। समर को इतना असहज और घबराया हुआ देखकर ऋषभ पूरी स्थिति समझ गया। वो समर को और भी ज्यादा असहज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत सफाई देते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं, वो बस गलती से, और मैं बस मजाक कर रहा था। मैंने ऐसे ही मस्ती में तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था, और तुमने भी तो पहले मेरे ऊपर पानी डाल दिया था। देखो, मैं पूरा गीला हो गया हूँ। ऋषभ ने जानबूझकर बात बदलते हुए अपने कपड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा। समर ने एक नज़र उसकी ओर देखा और बोला, तो तुम सो क्यों रहे थे इस वक्त और मेरी इतनी बार आवाज़ देने पर भी नहीं उठे? देखो ऋषभ, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो बता दो मुझे, मैं कल से नहीं आऊँगा। समर ने ये बात गुस्से में कह दी। ये बात सुनकर ऋषभ काफ़ी मायूस हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि समर इस तरह से उसे रोज़ पढ़ाने के लिए आना बंद कर दे, क्योंकि इसी बहाने वो उसके साथ थोड़ा समय बिताता था और अच्छा महसूस करता था। इसलिए ऋषभ निराश होते हुए बोला, क्या बार बार ना आने की धमकी देते रहते हो, और मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? बस जरा आंख लग गई थी तुम्हारा इंतज़ार करते करते ही, तुम्हें भी तो आज लेट हो गया। ऋषभ ने इस बार बहुत ही मासूमियत से ये बात कही। समर को भी उसके लिए थोड़ा बुरा लगा। उसे ऐसा लगा कि आज शायद वो सच में ज़्यादा रूखा व्यवहार कर रहा है, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा और बात बदलते हुए बोला, अच्छा ठीक है, जाओ कपड़े बदल लो और फिर हम पढ़ते हैं। इतना बोलते हुए समर वहां स्टडी टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी ये बात सुनकर ऋषभ कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ धीरे से सिर हिलाया और वहां से उठकर अपने कबट की ओर बढ़ गया, अपने लिए एक शर्ट निकालने के लिए। समर ने फिलहाल ऋषभ को अनदेखा करते हुए अपना मोबाइल फोन निकाला और उसमें कुछ करने लगा। ऋषभ ने एक नज़र उसकी ओर देखी और अपने मन में कहा, आई थिंक हमारा कुछ भी नहीं होने वाला और मुझे शायद ट्राई भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो जैसे उसका रिएक्शन था, आई विल डेफिनेटली स्क्रू इट ऑल। खुद से बातचीत करके इतना सोचते हुए ऋषभ ने अपने सामने की अलमारी खोली और उसमें अपने लिए दूसरी शर्ट निकालने लगा। जैसे ही उसे बदलने के लिए शर्ट मिल गई, वो वहीं अलमारी के सामने खड़ा होकर अपनी पहनी हुई शर्ट के बटन खोलकर उसे उतारने लगा। वो वहीं पर कपड़े बदलने लगा, क्योंकि पानी की वजह से उसकी शर्ट सबसे ज़्यादा भीगी थी, इसलिए वो बाथरूम में कपड़े बदलने नहीं गया। उसने समर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि समर अपने मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ था और बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। ऋषभ को लगा कि इतनी देर में वो अपनी शर्ट बदल ही लेगा, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी शर्ट के बटन खोले और अपनी शर्ट उतारने लगा। लेकिन तभी समर की नज़र उस तरफ पड़ी। वो भले ही मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन बीच बीच में वो ऋषभ की तरफ भी एक नज़र डाल रहा था। ऋषभ को इसका पता नहीं था, लेकिन जैसे ही ऋषभ ने शर्ट उतारी, उसकी शर्टलेस अपर बॉडी देखकर समर की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने थोड़ी तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कपड़े क्यों उतार रहे हो ऋषभ? ना चाहते हुए भी उसके मुँह से तेज़ आवाज़ में ये बात निकल गई। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, समर काफ़ी शर्मिंदा महसूस करने लगा और एकदम चुप हो गया। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर खड़े थे, क्योंकि कमरा काफ़ी बड़ा था और अलमारी बेड के पास वाली कुर्सी से काफ़ी दूर थी, इसलिए ऋषभ ने इतना नहीं सोचा था। लेकिन समर के इस तरह चिल्लाने पर उसका ध्यान भी समर की तरफ गया और उसने कहा, क्या कर रहा हूँ? मतलब ये तुमने ही तो बोला शर्ट बदलने के लिए, तो वही कर रहा हूँ। वैसे भी पहले वाली शर्ट पूरी गीली कर दी ना तुमने पानी डालकर, ऋषभ ने सीधा जवाब दिया। समर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोला, एटलीस्ट हैव सम मैनर्स ऋषभ, मैंने वॉशरूम में जाकर बदलने के लिए कहा था, यही रूम में मेरे सामने बदलने के लिए नहीं। समर की ये बात सुनकर ऋषभ बहुत कंफ्यूज हो गया। अब तक उसने अपनी शर्ट उतारकर दूसरी शर्ट भी पहन ली थी। उसके बटन बंद करते हुए वो समर की तरफ बढ़ा और बोला, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर तुम्हारे सामने शर्ट बदल भी ली, एंड वैसे भी वी बोथ गाइज, तो क्या प्रॉब्लम है? इतना बोलते हुए ऋषभ समर के एकदम सामने आकर खड़ा हो गया। समर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करके उससे नजरें चुराते हुए बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस मुझे इस तरह से सबके सामने कपड़े बदलते हुए देखने की आदत नहीं है, तो बस थोड़ा सा अजीब लगा और कुछ नहीं। समर ने ऋषभ की आंखों में देखे बिना ही ये जवाब दिया। उसकी ये बात सुनकर ऋषभ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन समर ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो फिर से अपना सामान्य चेहरा बना लिया और बोला, शुरू करें फिर? उसकी ये बात सुनकर समर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या क्या शुरू करें? ये बोलते हुए वो थोड़ा हड़बड़ाया हुआ भी लग रहा था। ऋषभ ने अपने सामने वाले टेबल पर रखी एक किताब उठाकर उसकी तरफ दिखाते हुए कहा, स्टडीज, और क्या, तुम कुछ और समझे क्या? इतना बोलते हुए उसने शरारत से मुस्कुराया। समर ने कहा, अरे वो तो मैंने कहा, हाँ स्टडीज ही मैंने भी कहा, लेकिन तुम जल्दी खुद से नहीं बोलते ना स्टडी के लिए, बस इसीलिए मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई। इतना बोलते हुए उसने जल्दी से ऋषभ के हाथ से वो किताब छीन ली और उसे खोलकर अपने सामने रखते हुए किताब में ही अपनी नजरें गड़ा ली। तब तक ऋषभ ने भी दूसरी नोटबुक खोली और फिर वो दोनों एक साथ पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई करते हुए वो दोनों ही बाकी बातें और अब तक जो कुछ भी हुआ सब कुछ अनदेखा करने की कोशिश कर रहे थे।
मीरा ने बहुत हैरान होते हुए शिविका से ये बात पूछी। शिविका को भी कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने करण की तरफ देखा तो वो पहले ही हाथ खड़े कर चुका था कि इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी बेवकूफ़ी खुद शिविका ने की थी। उसे क्या ज़रूरत थी ऐसा बर्ताव करने की? क्या थोड़ी देर के लिए भी मीरा के सामने वो बॉस की तरह बर्ताव नहीं कर सकती थी? क्यों बार बार उन दोनों को लिफ्ट के लिए ऑफ़र कर रही थी? करण की तरफ देखते हुए शिविका को भी ये सब समझ आ गया। उसने मीरा की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस करण मेरी वजह से सुबह से परेशान हो रहा है, तो मुझे लगा अभी वो टैक्सी के लिए भी यहाँ पर वेट करेगा, तो बस उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ एज अ थैंक यू गेस्टर, यू नो। इतना बोलते हुए शिविका ने ज़बरदस्ती मुस्कुराया। मीरा भी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो उसकी बातों से बिल्कुल कन्विंस नहीं हुई। मीरा ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन करण ने बात संभालते हुए बोला, मैम हम दोनों चले जाएंगे, आप प्लीज़ जाइए, आपको देर हो रही होगी ना? करण ने आखिरकार पूरी बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा। शिविका ने भी उसकी बात मान ली और अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे लेट हो रहा है, बाय, टेक केयर यू बोथ। इतना बोलते हुए उसने दोनों की तरफ देखकर अपना हाथ हिलाया और फिर सीधा अपनी कार की तरफ बढ़ गई। आगे आते हुए अपनी कार में बैठकर वो वहाँ से निकल गई। करण ने तब तक अपने घर जाने के लिए कैब बुक कर ली थी, जो कि कुछ ही देर में वहाँ पर आने वाली थी। तब तक वो मीरा के साथ वहाँ पर खड़ा था। मीरा उस तरफ देख रही थी जहाँ से शिविका अपनी कार में बैठकर गई थी। वो तब तक उस तरफ देखती रही जब तक शिविका की कार उसकी आंखों से उछल नहीं हो गई। तभी करण ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या देख रही हो उस तरफ, चली गई वो, वैसे तुझे जाना था क्या कार में? करण ने उसके पीछे खड़े होकर ही उससे पूछा। मीरा ने नहीं में अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं मैं ऐसे बड़े लोगों वाले कोई इतने शौक नहीं पालती, लेकिन वो मुझे। इतना बोलते हुए वो चुप हो गई और अपनी बात पूरी नहीं की। क्रमशः